हरे कृष्णा, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन।
यशोदानंदन व्रज जन रंजन।
यशोदानंदन व्रज जन रंजन।
यशोदानंदन व्रज जन रंजन।
यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर बेलगाम की ओर से श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष पर आयोजित किए जाने वाले इस गौर कथा के लिए स्वागत है। आज सुबह भी मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे जो आंतरिक कारण है उसकी चर्चा हुई थी, और अब संक्षेप में मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे बाह्य कारण कौन से थे। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, और हम सब जो कृष्ण भक्त हैं हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यदि हमें भगवान कृष्ण को समझना है, वृंदावन को समझना है, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को समझना है, श्रीमद् भागवतम को समझना है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही ये सब संभव है। अन्यथा अन्यथा ये पूरी संभावना है कि हम कोई गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। वैसे हम सबको पता है कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युग युग में वो प्रकट होते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, अभक्तों का या दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरी बात धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जहाँ तक श्री कृष्ण की बात है, उनके लिए ये एक बाह्य तीन कारण है। वास्तव में श्री कृष्ण अपने वृंदावन की लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं, और वृंदावन की जो भक्ति की पद्धति है उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उसका खुलासा दुनिया के सामने करना चाहते हैं। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्षमा कीजिए, इसलिए वो ये उनकी आंतरिक जो इच्छाएं हैं जिसके कारण वो प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के लिए बाह्य कारण ये है कि वो इस युग धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग का एक विशेष धर्म होता है जिसका पालन करने से सही तरह से हम जीवन की समसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन ये एकमात्र रास्ता बतलाया गया है। तो श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास का विराज गोस्वामी कहते हैं, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह सचिनंदनः। कविराज गोस्वामी कहते हैं वो पहले आशीर्वचन देते हैं कि ऐसे जो महाप्रभु, ऐसे जो श्री कृष्ण चैतन्य हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि सचिन माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, वो आपके हृदय में सदा विराजमान रहें और आपके जीवन को धन्य बनाएं। तो श्री कृष्ण ऐसे चैतन्य महाप्रभु के विशेष रूप में प्रकट होते हैं उस भेंट को प्रदान करने के लिए सारे दुनिया के लिए, जो कि उन्होंने अपने पूर्व किसी भी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, अनर्पित चरिम चिरात अनादि काल से नहीं किया था, अनर्पित था वो। अनर्पित चरिम चिरात करुणा करुणाय अवतीर्ण कलौ, तो कलौ अर्थात कलयुग में वो करुणा के कारण अवतीर्ण हुए हैं। और अवतीर्ण होकर वो क्या करते हैं, समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। तो इस उन्नत उज्ज्वल रस या जो वृंदावन का रस है, भक्ति का रस है, विशेष करके इसमें से जो गोपियों का रस है श्री कृष्ण के प्रति, वो इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने आए हैं। स्वभक्ति श्रियम, अपने ही भक्ति को सिखाने के लिए आए हैं कि कैसे श्री कृष्ण की भक्ति की जाए। हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, और ये श्री कृष्ण कैसे आए हैं, हरि वो स्वयं हरि है, पुरट सुंदर द्युति वो पिघले हुए सोने से भी अधिक सुंदर और तेजस्वी उनकी कांति है, बहुत तेजस्वी हैं वो। तो सदा हृदय कंदरे, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सदा आपके हृदय के कंदर में, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु, वो स्फुरित हो जाए। शचिनंदन है वही शचिनंदन, आपके हृदय में स्फुरित हो जाए। तो ये है श्री कृष्ण का उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेने के पीछे। तो जब श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और फिर चले जाते हैं वापस अपने धाम, तो कविराज गोस्वामी के शब्दों में उनके मन में ये विचार आता है, चिरकाल नहि कोरि प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नहि अवस्थान। मैं अनेक अवतारों में आता तो हूँ अवश्य, परंतु मैं ये प्रेम भक्ति का दान सबसे मैं नहीं करता हूं। तो ये प्रेम भक्ति दान मैंने बहुत लंबे समय से नहीं दी है, चिरकाल नहीं करी। चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय से मैंने ये प्रेम भक्ति का दान नहीं किया है। और भक्ति बिना जगत तेरा नहीं अवस्थान, और ये भक्ति के बिना जगत का कोई स्थान ही नहीं है। क्या परिस्थिति होगी दुनिया की यदि कोई भक्ति ना हो यहाँ पर। तो इसलिए वो सोचते हैं आगे चल के कि मुझे प्रकट होना चाहिए और ये प्रेम भक्ति का दान सबको देना चाहिए। और अभी कलयुग आने वाला है, क्योंकि श्री कृष्ण तो द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं और उसके बाद फिर कलयुग है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण सोच रहे हैं, युग धर्म प्रवर्ताम नाम संकीर्तन चारे भाव भक्ति दिया नाचम भुवन। तो वो कहते हैं कि युग धर्म का मैं प्रवर्तन करूंगा, प्रवर्तन अर्थात मैं उद्घाटन करूंगा। तो कलयुग में प्रकट होके जो कलयुग का युग धर्म है उसका मैं उद्घाटन करूंगा। और क्या है वो युग धर्म, नाम संकीर्तन चारी भाव भक्ति दिया नाचमो भुवन। तो चारी भाव भक्ति दिया इसका क्या मतलब है, वृंदावन में विशेष रूप से ये चार भक्ति के रस पाए जाते हैं, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, जिसको माधुर्य रस भी कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि नाम संकीर्तन के द्वारा इन चारों भावों को वो भुवन, संपूर्ण भुवन या विश्व के लिए वो प्रदान के ऊपर प्रदान करें, नाचमो और सबको नृत्य करवाएं। नृत्य और कीर्तन करवाने के लिए वो प्रेरित करें। और वो चाहते हैं कि यहाँ पर आके वो न केवल प्रदान करने वाले हैं लेकिन कैसे प्रदान करें, इसमें इस सोच में पड़ जाते हैं और इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि यदि मुझे अन्यों को भक्ति देना है तो स्वयं मुझे भक्ति करनी होगी, तो मेरे भक्ति करने के द्वारा ही मैं अन्यों को इस संपूर्ण सृष्टि में मैं ये विशेष वृंदावन का प्रेम प्रदान करूँगा। इसलिए वो सोचते हैं इस तरह से, जैसे कि कविराज गोस्वामी बोलते हैं, आपने करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपने आचार्य भक्ति शिखाइनु सवारे। तो वो कहते हैं कि आपने करिमु भक्ति भाव अंगीकारे, मैं स्वयं अंगीकार करूंगा अर्थात मैं स्वीकार करूंगा, स्वयं इस भक्ति भाव को स्वीकार करके मैं अपने आप भक्ति करूंगा। अपने करुम करिमु भक्ति भाव अंगीकार, स्वयं अपने आचरण भक्ति सिखाइमु सबार, और अपने आचरण से मैं संपूर्ण जगत को सिखाऊंगा कि भक्ति कैसे की जाती है। ये है चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण का विचार। और ऐसे सोचते हुए वृंदावन में जो विराजमान कृष्ण हैं वो फिर नवद्वीप में प्रकट हुए। और ये कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये कलयुग की प्रथम संध्या में मैं आऊंगा, ऐसे श्री कृष्ण सोच रहे थे, क्योंकि द्वापर युग की शेष संध्या में श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए थे, अब कलयुग के प्रथम संध्या में वो आना चाहते हैं, ऐसे सोच रहे हैं। वैसे हर युग की जो अवधि होती है उसकी गणना इस प्रकार से की जाती है कि मूल जो युग होता है जैसे कलयुग, उसकी एक अवधि होती है, तो ये 360,000 वर्षों की है कलयुग की, परंतु इसके पहले और इसके अंत में संधि संध्या होती है, तो प्रथम संध्या और शेष संध्या, तो और ये संध्या की अवधि है 10%, तो 360,000 वर्षों के 10% अर्थात 36,000 वर्ष, तो 36,000 वर्ष प्रथम संध्या है और 36,000 वर्ष शेष संध्या है, तो 36 और 360,000 कुल मिलाकर 432,000 साल होते हैं, जो कि संपूर्ण कलयुग की अवधि है। तो ये प्रथम संध्या जो है ये 36,000 वर्षों की है, और द्वापर युग की जो शेष संध्या है वो तो बहुत लंबी है, क्योंकि द्वापर युग तो बहुत लंबा है, कलयुग से 2 गुना लंबा है, त्रेता युग कलयुग से 3 गुना लंबा है, और सत्य युग 4 गुना ज़्यादा है। तो खैर श्री कृष्ण ने विचार कर लिया कि मैं कलयुग के प्रथम संध्या में प्रकट हो जाऊंगा नवद्वीप में। फिर कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि प्रारंभ में उनका नाम रखा गया था विश्वंभर, और ये धातु है दुभ्रीन, व्याकरण के दृष्टि से हर एक शब्द शब्द रूप का एक धातु होता है, मूल कहाँ से उत्पन्न होता है, तो दुभ्रीन धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है पालन और पोषण करना, भरण और पोषण करना। तो विश्वंभर कैसे जगत के लोगों का भरण पोषण करते हैं, कृष्ण प्रेम सबको प्रदान करके। और बाद में चल के फिर उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य, जबकि उन्होंने संन्यास लिया उसके बाद। वैसे भारत में और अन्य जगहों में भी शायद ऐसे प्रथा होती है कि कभी कभी जो असली नाम देते हैं वो कुछ रहता है, परंतु घर में कुछ अन्य दूसरे नाम से ही पुकारते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वंभर अवश्य था, परंतु वो निमाय के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि उन उनका घर जो है वो नीम के पेड़ के नीचे था, तो निमाय ऐसे उनका नाम रखा गया। और क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, इसलिए उनका नाम हुआ निमाय पंडित। वैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में गर्ग मुनि जो कि वसुदेव के कुल गुरु थे, उन्होंने श्री कृष्ण और श्री बलराम के नामकरण संस्कार करते समय एक भविष्यवाणी की थी या एक बात बताई थी कि ये लड़का कौन है। लड़के का परिचय देते हुए उन्हें कहा था कि ये बहुत ही विशेष हैं, नारायण की विशेष शक्ति उनको प्रदान हुई है। और उन्होंने बताया, आसन वर्णस्त्रयो ह्यस्य घृणतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। ये जो लड़का है इदानीं मतलब इस समय कृष्णताम गतः, वो सांवले रंग से उसका शरीर उसके शरीर की कांति है सांवले रंग की, कृष्ण कृष्ण अर्थात सांवला। परंतु इसके पहले वो शुक्लो रक्तस्तथा पीत, तो शुक्ल अर्थात सफेद, तो सत्य युग में सफेद रंग की कांति थी भगवान की, त्रेता युग में रक्त रंग की थी, और कलयुग में होने वाली है पीले रंग की पीत, और द्वापर में सांवले रंग की। इस तरह से गर्ग मुनि एक बात कहते हैं जो बहुत गुह्य बात है, महत्वपूर्ण बात है, श्री कृष्ण का परिचय देते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु भी समझाते हैं कि वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु वही हर एक युग में, बल्कि पीले रंग के अवतार आते हैं, परंतु वो हर एक अवतार जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। जिस द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उसके तुरंत बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो ये बात है कि हर एक कलयुग में युग धर्म है नाम संकीर्तन, हर एक युग में जो युग अवतार होते हैं उनका रंग पीला होता है। तो जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए उनका रंग भी पीला था, और उन्होंने भी नाम संकीर्तन इस युग धर्म का के आंदोलन का उद्घाटन किया। परंतु एक महत्वपूर्ण विशेषता है श्री चैतन्य महाप्रभु की, एक अंतर है। साधारणतः प्रत्येक युग में, प्रत्येक कलयुग में जो भगवान के अवतार प्रकट होते हैं उनका रंग पीला होता है, वो नाम संकीर्तन करते हैं। परंतु जब वो नाम संकीर्तन करते हैं तो नाम संकीर्तन के द्वारा उनको अधिक से अधिक वो वैकुंठ लोकों में पहुंचाते हैं, जहाँ की चतुर्भुज नारायण स्वरूप निवास करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ में। और दूसरी बात, ये जितने भी अवतार आते हैं कलयुग में वो अवतार होते हैं श्री कृष्ण के विस्तार होते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक अवतार और अवतारी के बीच में अंतर बतलाया गया है। वैसे अवतारी श्री कृष्ण हैं और उनसे अन्य जितने भी भगवत रूप हैं वो सब उत्पन्न होते हैं, और जब ये भगवत रूप धरातल पर अवतीर्ण होते हैं तो उनको अवतार कहते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अवतारी श्री कृष्ण जो वृंदावन के कृष्ण हैं वो जब प्रकट होते हैं वो भी अवतार हैं। इस तरह यदि हम कहें कि श्री कृष्ण अवतार हैं, गलत नहीं है, परंतु अवतार होने के साथ साथ वो अवतारी भी हैं। केवल श्री कृष्ण ही अवतारी हैं जो अन्य अवतारों के उद्गम हैं। तो जो साधारणतः कलयुग में प्रकट होते हैं युग अवतार, वो अवतार होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कला या उनके अंश या कला होते हैं। परंतु जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं कलयुग में, उनका रंग भी पिघले हुए सोने का रंग होता है, और वो भी नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं। अंतर यह है कि नाम संकीर्तन के द्वारा वो न केवल अपने भक्तों को वैकुंठ पहुंचाते हैं, बल्कि उसके ऊपर वृंदावन में पहुंचाते हैं, व्रज भूमि गोलोक वृंदावन में पहुंचाते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतारी हैं, अवतार नहीं है। इस दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ये बहुत विशेष है। वैसे भागवत के 11वें स्कंद में भी प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसः। इस कलयुग में विशेष जो एक धर्म है, युग धर्म है, वो क्या है? वो नाम संकीर्तन यज्ञ प्रायेर। तो इस श्री कृष्ण ये नाम संकीर्तन की जो उपासना करते हैं वो बहुत ही भाग्यवान हैं। सुदुर्लभः सुमेधसः, मतलब बहुत बुद्धिमान। तो ये नव योगेंद्र कहते हैं कि जब ये अवतार प्रकट होंगे कलयुग में, नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे, तो उनका वर्णन वो करते हैं कृष्ण वर्णम। वर्ण का मतलब है अक्षर, कृष और ण, ये दो अक्षर हैं। तो जब ये प्रकट होंगे तो ये कृष्ण कृष्ण कह के आएंगे, बारंबार इन दो अक्षरों का उच्चारण करेंगे। और त्विषा अकृष्णम, त्विषा मतलब उनके शरीर की कांति, कृष्णम मतलब सांवला, अकृष्णम मतलब जो सांवला नहीं है, अर्थात जो गौर रंग का है, सोने का रंग। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। तो जब भगवान प्रकट होंगे इस कलयुग में तो कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्रकट होंगे, उनके शरीर की कांति पिघले हुए सोने के समान होगी। स अंग उपग उप उपांग, स अंग उपांग उपंग पार्षद इत्यादि अस्त्र, अस्त्र पार्षदम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। अंग अर्थात उनके अंश, जैसे अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इत्यादि, और उनके उपंग हैं जो इनके जो सेवक हैं, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु आदि उनके सेवक हैं। उनके अस्त्र हैं ये हरिनाम आदि नाम संकीर्तन, और उनके विभिन्न पार्षद हैं, बहुत सारे पार्षद हैं। तो जब ये अवतार प्रकट होंगे तो अपने भक्तों के साथ में, पार्षदों के साथ में, अंग उपंग इनके साथ में वो प्रकट होंगे। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। तो जो बुद्धिमान लोग हैं इस कलयुग में वो ये संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उस भगवान के रूप की उपासना करेंगे जो कृष्ण का नाम निरंतर उच्चारण करते हुए प्रकट होते हैं, और जिनके शरीर की कांति सोने के समान है, और जो अपने भक्तों के साथ में आते हैं। तो संकीर्तन प्रायः ही, तो ये प्रायः शब्द का तात्पर्य क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मुख्यतः कलयुग का युग धर्म मुख्यतः नाम संकीर्तन है। ये मुख्यतः शब्द भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि हरिनाम के द्वारा ही व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण बना सकता है, फिर भी हर एक व्यक्ति की ऐसी पात्रता नहीं होती है कि वो निरंतर कृष्ण नाम ले, कम से कम शुरुआत में तो जीवन भर की तपस्या लगती है इसके लिए। ऐसा नहीं कि एक बार कोई साधन भजन करना शुरू करे और तुरंत वो निरंतर जप कर पाए, विरला ही कोई ऐसे बहुत विशेष भक्तों में भले हो पाए, परंतु साधारणतः ऐसे नहीं दिखाई पड़ता। तो प्राय ही का मतलब है कि ये नाम संकीर्तन के अतिरिक्त हमें और भक्ति के अंगों को भी स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं 64 अंगों का उल्लेख किया है साधन भक्ति के। यदि नाम संकीर्तन के अलावा और कोई चीज हमें करने की आवश्यकता न होती तो महाप्रभु इन अन्य अंगों की का वर्णन क्यों करते। एक दृष्टि से यदि कोई केवल नाम संकीर्तन कर सकता है और नाम संकीर्तन के अलावा कुछ नहीं करता है फिर भी उसे परिपूर्णता अवश्य प्राप्त होगी, परंतु ये करना मुश्किल है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत सारे साधन दिए हैं, अंग दिए हैं भक्ति के, जिनको श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में दोहराया है। जैसे अर्च विग्रह की उपासना और ग्रंथों का अध्ययन, बहुत से ऐसे चीजें हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वही कलयुग के विशेष अवतारी अवतार है। अवतारी क्योंकि समस्त अवतार उनसे उत्पन्न होते हैं, और अवतार इसलिए कि वो स्वयं अवतीर्ण होकर यहां पर आए हैं। तो ये है बाह्य कारण चैतन्य महाप्रभु के आगमन का या उनके प्राकट्य का। तो जो नास्तिक होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं, वो किसी भी समय भगवान को पहचान नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को हर समय जानते हैं, और भगवान भले अपना रूप बदल के भी क्यों ना आए वो भगवान को पहचान पाएंगे। तो जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बांसुरी नहीं बजा रहे थे, उनका रंग सांवला नहीं था, और उन्होंने संन्यास भी लिया, तो उनके जो निकट के भक्त थे वो उनको भलीभांति पहचान पाए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कई बार इस बात को मना करते थे कि वो भगवान है, फिर भी भक्त कहते थे आप हमें धोखा नहीं दे सकते, आप भले दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन हम आपके भक्त हैं और हम आपको पहचान गए हैं। तो भक्त भगवान को क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम रहता है। तो प्रेम के कारण चाहे भगवान किसी भिन्न रूप में भी प्रकट हो जाए भगवान को पहचान लेते हैं, भले तुरंत न भी पहचान पाए लेकिन शीघ्र ही पहचान पाते हैं। तो ऐसे कई घटनाएं चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में आदि हैं। और जो इसके विपरीत भक्त नहीं है, जो भी हम उनको कहें, समझाने का प्रयास करें, वो नहीं मान सकते। तो जब महाप्रभु सुनते थे कि कोई उनसे कह रहा है कि आप भगवान है, तो अपने कानों को बंद कर देते थे, कहते थे विष्णु विष्णु मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं क्षुद्र जीव हूँ, और ये बहुत बड़ा अपराध है कि एक जीव को भगवान कह के संबोधित करना। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं ही, परंतु वो दुनिया के लिए एक उपदेश देना चाहते थे कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जीव कृष्ण हो सकता है। ये मायावादी सिद्धांत है जिसका खंडन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों बार किया। तो इसके बाद भी अपने प्रिय भक्तों के समूह में कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भगवत स्वरूप को भी प्रकट किया करते थे, अपने भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा को बढ़ाने के लिए। एक बार उन्होंने महाप्रकाश लीला की। महाप्रकाश लीला ये क्या है? 7 प्रहर लीला, अर्थात 1 प्रहर 3 घंटों का होता है, तो 7 प्रहर अर्थात 21 घंटे। तो ये लीला जो है महाप्रभु की लगातार 21 घंटे चली। इस लीला का वर्णन विस्तार में वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत में करते हैं। तो 21 घंटों तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत स्वरूप स्वीकार करके अपने भक्तों को कहा कि जो तुम चाहे तुम मांगो मुझसे और मैं वो तुम्हें दूंगा, तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। और क्योंकि ये सारे शुद्ध भक्त थे तो भक्ति के अतिरिक्त तो और कुछ मांगते नहीं थे, अपने लिए नहीं मांगते तो दूसरों के लिए मांगते थे। ये अंतर होता है शुद्ध भक्तों में और मिश्र भक्तों में। मिश्र भक्त वो होते हैं जो भगवान कृष्ण से कुछ मांगते हैं, परंतु शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण से कोई भौतिक चीज नहीं मांगते हैं। तो इस समय ये सात प्रहरीय भाव, इसको कहते हैं सात प्रहरीय भाव युक्त जो महाप्रकाश लीला है, इस दौरान महाप्रभु ने अपनी भगवत्ता को स्वीकार किया और प्रकट करवाया। परंतु ये बार बार नहीं होता था, विशेष विशेष रूप से कई बार एक एक ऐसे भक्तों को वो करवा देते थे, लेकिन ये महाप्रकाश लीला में तो सबके ऊपर उन्होंने कृपा की। उनके एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीधर खोलावेचा, का नाम आप सबने अवश्य सुना होगा। तो ये बहुत गरीब थे, केले बेचते थे, केलों के पत्तों को बेचते थे, केलों के फूलों को बेचते थे, इससे थोड़ा कुछ जो भी आमदनी होती थी 50% गंगा की उपासना में खर्च कर देते थे, बाकी थोड़ा कुछ जो भी बचा उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे जाके बहुत कम कीमत में, वैसे भी श्रीधर खोलावेचा कम कीमत में अपने माल को बेचते थे, लेकिन महाप्रभु जाके वहाँ उनसे तर्क करके झगड़ा करके उनसे और भी कम कीमत में खरीद के लेकर आते थे। और महाप्रभु को ये बड़ा आनंद आता था इस तरह का व्यवहार, इस तरह की लीला करने से। जब श्रीधर खोलावेचा से उन्होंने महाप्रकाश लीला के समय पूछा कि श्रीधर बताओ, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कौन सी इच्छा है, मैं पूर्ण करूं बताओ, तो श्रीधर खोलावेचा ने कहा बस एक ही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर आप केवल ऐसे ही ब्राह्मण बन के आइए और मेरे केले चुराते रहिए, आप मुझसे झगड़ा करके मेरे केले छीन के ले जाइए हर साल, हर हर जन्म में। तो देखिए ऐसे विचार अभक्तों के लिए संभव तो नहीं है ना। यदि कोई अभक्त से कहें कि भाई ऐसे भी कोई प्रार्थ किसी ने की थी, वो सोचेंगे भाई बड़ी विचित्र बात है। तो उस महाप्रकाश लीला के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर खोलावेचा को अपना कृष्ण बलराम का स्वरूप दिखाया, और श्रीधर खोलावेचा जैसे महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि ये जो गौर स्वरूप है ये सन्यासी का, ये परिवर्तित हो गया है, ये सांवला रंग हो गया है, और ये हाथ में बांसुरी लिए बजा रहे हैं, और साथ में उनके बहुत गोरे रंग के बलराम जी भी उपस्थित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर खोलावेचा को कृष्ण बलराम का दर्शन करवाया। तो इस तरह से कई बार अन्य भक्तों को भी उन्होंने ऐसे दर्शन दिए। एक बार हुआ ये कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भाव में थे और यहाँ वहाँ भ्रमण करते थे, तो गंगा के तट पे एक बार वो घूम रहे थे, सैर कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे गाय हैं, बछड़े हैं, और उनकी जो आवाज़ें आईं और थोड़े बछड़े थे वो उछल रहे थे, तो ये सारा दृश्य देखकर उनको वृंदावन की याद आई। और न केवल वृंदावन की याद आई, उन्हें ये भी याद आया कि वो कौन हैं, कि वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। भगवान की लीला शक्ति या योग माया के कारण चैतन्य महाप्रभु को याद नहीं था कि वो स्वयं वृंदावन के कृष्ण हैं। परंतु अब उन्होंने जब इन गायों को देखा, बछड़ों को देखा, तो जोर जोर से कहने लगे मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मतलब मैं वही वृंदावन का कृष्ण हूँ। तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसे सोचते सोचते फिर वो वापस चले आए, सीधे श्रीवास ठाकुर के घर में आए। श्रीवास ठाकुर अपने घर के अंदर अपने पूजा गृह में अपने भगवान श्री नरसिंह देव की श्री विग्रह की उपासना कर रहे थे, तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठे थे। तो जब महाप्रभु ने देखा कि श्रीवास ठाकुर यहाँ कहीं नहीं है और पूजा घर के अंदर बैठे हैं, तो उन्होंने धड़ाक से दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश किया और कहने लगे कि श्रीवास, तुम किन की उपासना कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जिनकी उपासना तुम कर रहे हो वो अब तुम्हारे सामने खड़े हैं? तो श्रीधर तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि कुछ बोल ही नहीं पाए श्रीवास ठाकुर। तो फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास, तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? और श्रीवास ठाकुर ने निरुत्तर थे उस समय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दर्शाया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये चतुर्भुज रूप स्वीकार करके श्रीवास ठाकुर के ऊपर ये कृपा की। तो वो कहने लगे कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तो जब मेरे धाम में बैठा था, तुमने और अद्वैत आचार्य ने तो मुझे बहुत जोर जोर से पुकारा, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और अब जब मैं आया हूँ तो तुम ऐसे बिना परवाह के जी रहे हो। और वो रहे अद्वैत आचार्य, जो मुझे यहाँ छोड़कर अपने शांतिपुर चले गए, और मैं यहाँ दुष्टों का विनाश करने आया हूँ श्रीवास, इसलिए तुम बिल्कुल तनाव नहीं लेना, तुम घबराना नहीं। तो ये सब देखकर और सुनकर श्रीवास ठाकुर भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से अश्रु धारा होने लगी और उन्होंने जाकर अपने सारे परिवार के सदस्यों को बुलाया और सब ने जितने भी उपचार हैं, पूजा के उपचार हैं, उनके द्वारा उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, जो कि उन्होंने अपने पूजा घर में विग्रह की सेवा के लिए सामग्री लाई थी उस सब का प्रयोग उन्होंने इस्तेमाल किया। तो फिर श्रीवास ठाकुर कहने लगे कि आपने मुझे इस अंध कुएं में डाल दिया, इसलिए मेरे इतने जन्म बीत गए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन मेरा भाग्य अब है कि आपकी कृपा से मैं आपके परिचय को जान चुका हूँ। तो इस तरह से अपने सारे परिवार के सदस्यों को बुलाकर महाप्रभु की कृपा स्वीकार करके सारे परिवार के सदस्य धन्य हो गए। फिर महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से पूछा कि श्रीवास, तुम्हें किस बात का डर है? तुम इस बात से डरे हुए हो ना कि जो नवाब है वो आके यहाँ कुछ तुम्हें परेशान करेगा? तो तुम चिंता नहीं करना, देखो मैं आश्वासन देता हूँ, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ, इसलिए उस राजा के हृदय में भी हूँ और मैं उसे मना करूँगा कि वो तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हें परेशान न करे या नवद्वीप पे किसी भी व्यक्ति को परेशान न करें। परंतु यदि वो स्वतंत्र व्यवहार करे, मेरी बात नहीं माने, तो फिर भी मैं जाके उसके सामने ये कहूँगा कि जब वो अपने नौके में बैठकर आए तो मैं नौके में कदम रख के कहूँगा कि हे राजन, आप यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते, मेरे भक्तों को कष्ट नहीं दे सकते। यदि मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, फिर मैं उनको चेतावनी दूंगा और कहूँगा कि देखते हैं आपके जितने भी लोग हैं उनको बुलाइए, और ये जो हाथी हैं इनको आप दिव्य आनंद से विफल होके रुलाने को रुला पाएंगे क्या? तो जब अब नहीं कर पाएंगे वो लोग, तो मैं स्वयं नाम संकीर्तन के द्वारा, मेरी कृपा शक्ति के द्वारा इस सारे हाथियों को कृष्ण प्रेम प्रदान करके उनको प्रेमावेश में ले आके भाव विभोर करवा दूंगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु बताने लगे। और न केवल मैं इन हाथियों को परंतु स्वयं भगवान को और भगवान के और वो राजा को, राजा के जितने भी सैनिक मंत्री आदि हैं, उन सबको भी कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। और ठीक उसी समय उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को देखा जिसका नाम था नारायणी, जो कि श्रीवास ठाकुर के भाई की बच्ची थी, पुत्री थी। वो केवल 4 या 5 साल की थी उस समय। आगे चल के ये नारायणी जो है ये वृंदावन दास ठाकुर की माँ बनी, वही वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की थी। तो उन्होंने, महाप्रभु ने नारायणी को बुलाया और आदेश दिया कि कृष्ण कहो और प्रेमावेश में आ जाओ। तो तुरंत नारायणी ने कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दिया। स्वाभाविक प्रेम उनके उस बच्ची के हृदय से निकला और कंठ जो है गदगद वाक्यों से रुद्ध हो गया और रोंगटे खड़े हो गए, अश्रुधारा होने लगी, शरीर में कंपन होने लगी और वो नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी। तो सारे जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे श्रीवास ठाकुर के परिवार में, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर श्रीवास से महाप्रभु ने कहा कि अब तो तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो ना, अब तो कोई भय नहीं है ना तुम्हारे हृदय में, कोई नवाब आदि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि हे भगवान, जब आपने कहा है कि आप काल रूप में आते हैं सब और हर एक व्यक्ति का सब कुछ हरण कर लेते हैं, तो जब वो समय आएगा और आपका ये भयानक काल स्वरूप आप मेरे सामने प्रकट करवाएंगे, तो उस समय मैं निर्भय होकर आपके पवित्र नामों का उच्चारण करता रहूँगा। और इस तरह से विश्वंभर या श्री कृष्ण चैतन्य निमाय पंडित, उन्होंने श्रीवास ठाकुर के ऊपर कृपा कर दी। तो और एक बार ऐसे हुआ कि मुरारी गुप्त नाम के एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, उनके एक पार्षद थे। तो ये वैसे श्री रामचंद्र के भक्त थे, हनुमान जी के अवतार थे मुरारी गुप्त। तो वो मुरारी गुप्त के पास गए। जब वो वराह अवतार की लीला सुन रहे थे श्रीमद् भागवत से, अचानक वराह भाव में आ गए और दौड़ते हुए मुरारी गुप्त के घर में पहुंचे। और बहुत जैसे ही देखा उन्होंने, मुरारी गुप्त ने निमाई को देखा, महाप्रभु को देखा, तो तुरंत उन्होंने स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया। परंतु ये बहुत जल्दी में थे, सीधे शुकर शुकर वराहा वराहा कह के वो पार कर गए मुरारी गुप्त को और उनके पूजा घर में गए। पूजा घर में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एक कमंडलू है। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने वराह रूप धारण किया मुरारी गुप्त के आंखों के सामने, और उन्होंने अपने दंष्ट्रों से उस कमंडल को उठाया। तो ये मुरारी गुप्त देख रहे थे और ये वराह जो है बहुत गर्जना कर रहे थे। और फिर मुरारी गुप्त से कहा उन्होंने, कुछ मेरी स्तुति करो हे मुरारी। तो उस समय डर के मारे मुरारी गुप्त के मुख से कुछ एक शब्द भी नहीं निकला। तो फिर महाप्रभु ने कहा, डरो नहीं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मेरा परिचय नहीं जानते तुम? तो मुरारी ने कहा कि हे भगवान, केवल जो आपकी महिमा है केवल आप ही जानते हैं। अनंत शेष अनादिकाल से आपकी महिमा का गान करते आए हैं और आज भी आपकी महिमाओं के अंत तक नहीं पहुंचे हैं वो। इस तरह से मैं आपकी कैसे गुणगान कर सकता हूँ। और ऐसे बेहोश होकर वो गिर पड़े जमीन के ऊपर। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु क्रोध में आए, मुरारी गुप्त के प्रति नहीं, परंतु उन लोगों के प्रति जो ये कहते हैं कि भगवान निराकार आदि हैं। वो कहने लगे कि हे मुरारी, ऐसे बताया गया है कि मेरे कोई हाथ नहीं है, मेरे कोई पैर नहीं है, मेरे कोई इंद्रियां नहीं, जैसे आँखें वगैरह नहीं है, और एक ऐसे एक सन्यासी हैं प्रकाश आनंद जो वाराणसी में निवास करते हैं, और वो इस प्रकार से मेरे दिव्य रूप को तोड़ मोड़ करना चाहते हैं, और इस तरह से उसे कुष्ठ रोग भी हो गया। परंतु इसका वो जो मैं संकेत देना चाहता था उसको वो नहीं समझ पाया, और मेरा जो रूप है वो दिव्य है, और मेरे रूप के स्पर्श मात्र से सब कुछ पवित्र हो सकता है, और फिर भी ये दुष्ट व्यक्ति कहता है कि मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरी इंद्रियां नहीं है। तो इस तरह से महाप्रभु ने जो मायावादी लोग हैं उनके प्रति अपना रोष प्रकट करवाया, और फिर महाप्रभु कहने लगे कि हे मुरारी, कृपया सुनो, मेरा जो यहाँ प्रकट होने का उद्देश्य है इस समय, वो ये है कि मुझे हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन सब जगह प्रचार प्रसार करना है, और इस अवतार में भी जैसे कि अन्य अवतारों में मैंने किया है, अवश्य मैं दुष्टों का विनाश करूँगा और भक्तों की रक्षा करूँगा। जैसे कि शुक्र रूप में मैंने पृथ्वी की रक्षा की थी, और फिर वो गर्भवती हो गई, और जो पुत्र हुआ उसका नाम निकला नरक, और मैंने उसे अच्छे उपदेश दिए, वो राजा बना और ब्राह्मण की रक्षा अच्छी तरह से कर रहा था, परंतु वेन महाराज के कुसंग के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और मेरे भक्तों के प्रति उसने अन्याय और अत्याचार करना प्रारंभ कर लिया, और इसलिए हे मुरारी मुझे अपने ही पुत्र की हत्या करनी पड़ी, और मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम अनेक जन्मों से मेरे सेवा करते आए हो। तो इस प्रकार ये सारी चीजों को सुन के मुरारी गुप्त जो हैं वो फूट फूट के रोने लगे आनंद से, और महाप्रभु के चरण कमलों में पड़े, उनके चरण कमल उन्होंने पकड़ लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को चतुर्भुज रूप दिखलाया, मुरारी गुप्त को वराह रूप दिखलाया, श्रीधर खोलावेचक को कृष्ण बलराम का रूप दिखलाया। वैसे आगे चल के जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो गोदावरी के तट पे विद्यानगर में उन्होंने रामानंद राय को अपना राधा कृष्ण का स्वरूप भी दिखलाया, और जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे पहली बार संन्यास लेने के बाद, तो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले। अब सार्वभौम भट्टाचार्य शुरुआत में समझ नहीं पाए कि ये कौन है, वो सोच रहे थे कि इतनी कम उम्र में इन्होंने संन्यास लिया है, ये ठीक नहीं है, और ये संन्यास लिया भी है तो किसी निम्न श्रेणी के संप्रदाय में उन्होंने संन्यास लिया है इत्यादि, और उनको वेदांत उपदेश भी करना चाह रहे थे। फिर अंततः एक बार ये सब तो हुआ, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु के बीच में जब संवाद हो रहा था, तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका करते हो, तो मैं तो महाप्रभु ने कहा मैं तो आपकी टीका सुनना चाहता हूँ। तो भट्टाचार्य ने कहा कि भागवत की कौन सी बात ठीक से नहीं समझ पाते हो वो बताओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो महाप्रभु ने ये श्लोक कहा, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंथाप्युरुक्रमे, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मा राम श्लोक कहते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि इस श्लोक को समझाइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने प्रगाढ़ पंडित थे कि बस एक इशारे पर ही उन्होंने इतनी विद्वत्ता से इस श्लोक के ऊपर टीका की, 9 अलग अलग तरह से उन्होंने इस श्लोक का अर्थ बताया। और फिर चैतन्य महाप्रभु हंसे और उन्होंने सोचा कि मैं और आपको अलग तरीके से इसका जो अर्थ है मैं बता सकता हूँ। वैसे भट्टाचार्य इतने विद्वान थे कि वो और भी शायद कह सकते थे, परंतु इस बार जब उन्होंने कुछ बातें कहीं तो महाप्रभु के इस व्याख्या को सुनकर वो इतने निरुत्तर हो गए, स्तब्ध हो गए कि बोल नहीं पाए। महाप्रभु ने 13 तरीकों से इसी श्लोक की व्याख्या की, और जो महाप्रभु ने, जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 तरीकों से की थी, उसका स्पर्श न करके और नए 13 तरीकों से आत्मा रामाश्च मुनयो श्लोक की व्याख्या उन्होंने की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे थे कि मेरी बुद्धि के तो ये परे है, मैं तो नहीं सोच सकता कि 9 तरीकों के अलावा और भी कोई तरीका हो सकता है इस श्लोक को समझने के लिए। लेकिन ये जो सन्यासी हैं श्री कृष्ण चैतन्य, इन्होंने और नए 13 तरीकों को ढूंढ निकाला है, और ऐसी व्याख्या के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता था। इसी श्लोक की व्याख्या उन्होंने सनातन गोस्वामी को की 61 तरीकों से। इसका वर्णन भी चैतन्य चरितामृत में आता है। तो खैर, इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए पूरी तरह से, और ऐसे अवस्था में बस देखते रह गए। उस समय महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की, और कृपा करके उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को एक बहुत अद्भुत रूप दिखाया। ये रूप है षडभुज रूप। षड मतलब 6, भुज मतलब भुजाएं, बाहें। तो इसमें भगवान के 3 रूप एक साथ सम्मिलित थे। एक श्री कृष्ण, उनके 2 हाथ जो थे वो बांसुरी पकड़ रहे थे और बजा रहे थे। दूसरे रूप थे श्री रामचंद्र, जिन्होंने एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ में तीर पकड़ी हुई थी। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी, एक हाथ में माला, दूसरी हाथ में कमंडल। इस तरह से 6 भुजाएं, 3 अवतार, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र और श्री चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु है ये परम सत्य भगवान है, और ये श्री राम है, यही श्री कृष्ण है। भाव विभोर होकर गिर पड़े, और फिर जब अपने बेहोश होके बेहोश अवस्था में थे तो महाप्रभु ने उनका स्पर्श किया, कहा उठो जागो। और फिर सार्वभौमा ने उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि आज मैंने उस चोर को पा लिया है जिसने मेरा हृदय चुरा लिया है। तो इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 श्लोक उसी स्थान पर वो कहने लगे, उन्होंने रचना की उसी समय महाप्रभु के गुणगान में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे, फिर भी कभी कभी अपने विशेष भक्तों के सामने उन्होंने अपना भगवत रूप भी दर्शाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कहे कि मैं भगवान का अवतार हूँ तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपका विश्व रूप दिखाइए, आपका भगवत रूप दिखाइए, ये भी बतलाइए कि शास्त्र में कहाँ भविष्यवाणी हुई है आपके बारे में, आप कौन से अद्भुत कार्य कर पा रहे हैं जो कि असाधारण मनुष्यों के लिए भी संभव नहीं है। तो इस तरह से जब लोग अज्ञानवश अपने आप को अवतार घोषित करते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि ये बहुत गलत है। महाप्रभु ने स्वयं हर दृष्टि से अपने आप को भगवान साबित किया, अपने भक्तों को ये अलग अलग रूप दिखाए, शास्त्रों में उनके बारे में भविष्यवाणी है, ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य उन्होंने अपने लीलाओं में किए जिनका उल्लेख भाग चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में है। और उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है कि वो ये वृंदावन के प्रेम को देना चाहते हैं दुनिया के लोगों को नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महाप्रभु का आंदोलन है। हमारा अहो सौभाग्य है कि हमें भी इस आंदोलन में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इस आंदोलन का बहुत अच्छी तरह से लाभ उठाएं। आज श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव दिन है, उनके चरण कमलों में हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि इस संकीर्तन रस का आस्वादन भले हमें वो कराएं, वो एक छोटी 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 बूंद क्यों ना हो। इससे ज़्यादा भी सहन भी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रस हमें वो प्रदान करें, थोड़ा सा लोभ इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें वो प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना हम उनके चरण कमलों में आज कर सकते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।